आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, बीमे से मुतालिक बेदारी पैदा करने और मालियाती शमूलियत के लिए बीमा सखी योजना का आगाज किया है। उन्होंने कहा है कि बाइख्तियार ख़वातीन मुल्क की तरक्की के लिए राहें हमवार करती हैं। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ मुजाकिरात किए। उन्होंने कहा है कि भारत पड़ोसी मुल्क के साथ मुस्बत और बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात का ख्वाहां है। भारत के नए जंगी गाइडेड मिसाइल INS तुशील को आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस में बहरिया में शामिल किया गया। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे और जुनूबी कोरिया ने सदर यून सुक योल के बैरूनी सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। और सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश चीन के डिंग लिनैन से 12वें गेम में हार गए हैं और बराबरी पर पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के शहर पानीपत में बीमा सखी योजना का आगाज किया। इस स्कीम का मकसद ख़वातीन के माबेन मालियाती ख्वांदगी और बीमे से मुतालिक बीमा बेदारी को फरोग देना है। भारत के जिंदगी बीमा कॉरपोरेशन LIC की ये पहल 18 से 70 साल की उन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाएगी जिन्होंने 10वीं क्लास पास की हुई है। इसके तहत उन्हें खुसूसी तरबियत और पहले 3 सालों के लिए एक मुशाहरा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बीमा सखियों को तकर्रुरी के सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सबके लिए बीमा समाजी तहफ्फुज़ का एक कलीदी हिस्सा है और ये गरीबी को जड़ से खत्म करने में अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन ने बैंककारी की खिदमात को गांव तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि बैंक सखियां अब गांव वालों को बैंकों के साथ मुंसलिक कर रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए गैर मामूली इकदाम किए हैं। जनाब मोदी ने चंद साल कबल पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का आगाज करने के अपने इकदाम की याद दहानी कराई।
कुछ साल पहले मुझे यहाँ पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये बात अहमियत की हामिल है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनने और आगे बढ़ने के वाज़े मौके हासिल हों। उन्होंने कहा कि जब ख़वातीन बाइख्तियार होती हैं तो वो मुल्क के लिए मौके की नई राहें हमवार करती हैं।
2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के असल कैंपस का संग बुनियाद भी रखा। इससे कबल आज वज़ीर-ए-आज़म ने राजस्थान का दौरा किया और जयपुर में सह रोजा उभरते हुए राजस्थान की आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में खिताब करते हुए जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस सदी की क्यादत टेक्नोलॉजी और आदादोशुमार के जरिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत जमहूरियत आबादियात और आदादोशुमार की असल कुव्वत का दुनिया के सामने मुजाहिरा कर रहा है।
ये सदी टैग ड्रिवन डेटा ड्रिवन सदी है। भारत दुनिया को डेमोक्रेसी डेमोग्राफी और डेटा की असली ताकत दिखा रहा है। भारत ने दिखाया है कि कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है।
हमारे जयपुर के नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज जारी उभरते हुए राजस्थान के आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबा जाति और मुल्कीर इजलास का इनेकाद किया गया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान वफद सतह की मुजाकिरात समेत आज तीसरे पहर ढाका में बांग्लादेश के अपने हम मनसब मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ मुजाकिरात किए। जनाब मिश्री ने, जो ढाका के एक रोजा दौरे पर हैं, बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी के साथ भी अलहदा से एक बिल मुशाफा मीटिंग की। ढाका में अखबार नवीसों से बात करते हुए जनाब मिश्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ एक मुस्बत तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद ताल्लुकात का ख्वाहां है। खारजा सेक्रेटरी ने बयान किया कि उन्होंने मामलात के तमाम रमूज पर तबादले ख्याल किया।
I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed.
खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश में बहुत से हालिया वाकयात और मामलात पर तबादले ख्याल किया। नीज उन्होंने अकलियतों के तहफ्फुज़ और बहबूद से ताल्लुक रखने समेत तशवीश का इजहार किया। खारजा सेक्रेटरी एक रोजा दौरे पर भारतीय फजाइया के एक जहाज से आज सुबह ढाका पहुंचे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मनामा में चौथी भारत बहरीन आला मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के मुआविन सदारत की। अपने इफ्तिताही कलमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत बहरीन तआवुन तिजारत के फैलाव सरमायाकारी दिफा और बहरी सलामती के तौसी पाते हुए मंजरनामे को उजागर किया। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में मुश्तरका बहरी फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में हाल ही में भारत की शिरकत को वाजे किया।
We also cooperate closely on defense and security matters. India's joining of the combined maritime forces, which is headquartered in Manama, will certainly be beneficial to strengthening regional maritime security. And we affirm our very firm commitment to the safety and security of international maritime activities.
वजीर मौसूफ ने बहरीन के सरमायाकारों को भारत में तलाश करने के मौके के लिए खैर मकदम कहा। उन्होंने भारतीय निजाद अफराद के साथ बहरीन के बर्ताव की सताइश की, जिसे उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान एक अहम पुल करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। INS सुशील को भारतीय बहरिया में शामिल कर लिया गया है। इस जदीद तरीन मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल करने की तकरीब रूस में मुनक़िद हुई। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। INS सुशील को गहरी समुद्री कार्रवाइयों के सभी चार बहरी जंगी तरीक़ेकार फजा सतह ज़ेर आब और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए डिजाइन किया गया है। INS सुशील जदीद तरीन हथियारों जैसे मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ब्राह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों और इजाफी हदूद के साथ उमूदी तर्ज पर लॉन्च किए जाने वाले सतह से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस है। वजीर दिफा ने इस बहरी जहाज के बहरिया में शामिल किए जाने को मुल्क की बढ़ती बहरी ताकत के लिए फख्र की बात करार दिया और इसे भारत और रूस की दहरीना दोस्ती की राह में अहम संग मील से ताबीर किया। जनाब सिंह ने मुल्क के आत्मनिर्भर भारत के नजरिए में रूस के तआवुन को दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती की अहम मिसाल करार दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि INS सुशील समेत कई बहरी जहाजों में मेड इन इंडिया कल पुर्जों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जनाब सिंह ने कहा कि INS सुशील भारत और रूसी सनतों के इश्तराक और हुनरमंदी की बड़ी मिसाल है। जेवर के नोएडा बैनलक्वामी हवाई अड्डे पर पहली आजमाइशी परवाज कामयाब रही, जिसके बाद इस हवाई अड्डे के अगले साल से मुकम्मल तौर पर फाल होने की राह हमवार हो गई है। पहली परवाज के दौरान शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने इस अमल में मसरूफ पूरी टीम की सताइश की। जनाब नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा हवाई सफर और भारत में इलाकाई कनेक्टिविटी में पूरी तरह बदलाव लाएगा। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि ये हवाई اڈہ سالانہ 1,20,00,000 مسافروں کو عالمی درجے کی سہولت فراہم کرے گا. شہری ہوابازی کے وزیر نے کنیکٹیویٹی کے منصوبوں جیسے سڑک، ریل اور میٹرو رابطوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور مستقبل کی ہائی اسپیڈ ریل کنیکٹیویٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا. جناب نائیڈو نے اس پروجیکٹ کے ذریعے ہزاروں ملازمتوں کے پیدا ہونے، سیاحت کے فروغ اور مغربی اتر پردیش کی علاقائی ترقی کو تقویت دینے کی زبردست صلاحیت کی بھی نشاندہی کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو انسانی حقوق کے دن کے موقع پر کل نئی دلی میں انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے ذریعے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کریں گی. انسانی حقوق کا دن ہر سال 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اس سال کے لیے موضوع ہے ہمارے حقوق ہمارا مستقبل. اسی وقت یہ موضوع اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی حقوق نہ صرف تحریکی ہیں بلکہ ایک بہتر مستقبل وضع کرنے کے لیے افراد اور کمیونٹی کو با اختیار بنانے کا ایک عملی وسیلہ بھی ہے. سنجے ملہوترا بھارتی ریزرو بینک کے اگلے گورنر ہوں گے. کابینہ کی تقرری سے متعلق کمیٹی نے ان کے نام کو منظوری دی ہے. ان کی تقرری اس عہدے کے لیے 3 سال کی مدت کے لیے کی گئی ہے جو اس مہینے کی 11 تاریخ سے شروع ہوگی. 1990 بیچ کے راجستھان کیڈر کے آئی اے ایس افسر اس وقت وزارت خزانہ میں ریوینیو سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ شکتی کانداس کی جگہ لیں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملوں کی وجہ سے آج کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی. ایک معروف بھارتی کاروباری گروپ پر لگے رشوت کے مبینہ الزامات اور امریکہ میں مقیم ایک معروف فاؤنڈیشن سے کانگریس رہنماؤں کے مبینہ تعلقات پر برسر اقتدار اور اپوزیشن اراکین کے درمیان خوب بحث ہوئی. جاری تعطل کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی. لنچ کے بعد کی کارروائی میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ہنگامے کے درمیان دریل امینڈمنٹ بل پر بحث کا جواب دینے کی کوشش کی. پریزائڈنگ افسر نے احتجاج کرنے والے اراکین سے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے کہا لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کا ہنگامہ رہا. برسر اقتدار اور اپوزیشن کے اراکین کے درمیان زوردار بحث کی وجہ سے ایوان کی کارروائی 3 مرتبہ ملتوی کر دی گئی. مرکز نے آج بتایا کہ بھارت کے وقف اثاثوں کے انتظامیہ کے نظام WAMSI کے پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ ملک میں منقولہ اور غیر منقولہ وقف جائیدادوں کے اعداد و شمار کو یکجا کیا جا سکے. راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں اقلیتوں کے امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ ابھی تک متعلقہ ریاستی وقف بورڈز SWBs کے ذریعے WAMSI پورٹل پر 8,72,000 غیر منقولہ اور 16,713 سے زیادہ منقولہ جائیدادوں کا اندراج کیا گیا ہے. جنوبی کوریا کے حکام نے صدر یون سوک یول پر سفر کرنے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. وہ گزشتہ منگل کو اپنے قلیل مدتی مارشل لاء کا اعلان کرنے کے لیے زیر تحقیقات ہے. یہ پابندی وزارت انصاف کے ذریعے اعلی عہدے کے افسران کے لیے بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے دفتر کے اس اعلان کے کچھ عرصے بعد عائد کی گئی کہ اس نے اس حکم کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی. مقامی میڈیا کے مطابق یون کو مارشل لاء کے ان حیرت انگیز اعلان سے متعلق بہت سی تحقیقات میں ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. آج سنگاپور میں عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کے گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش دفاعی چیمپئن چین کے ڈنگ لیرین سے 12ویں گیم میں ہار گئے. 18 سالہ گوکیش مسلسل 7 ڈرا میچوں کے بعد اتوار کو اپنی دوسری جیت کے ساتھ 1 پوائنٹ سے آگے تھے. آج لیرین کی جیت کے بعد دونوں کھلاڑیوں کا اسکور 6-6 پوائنٹ پر برابر ہو گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین کو با اختیار بنانے، بیمے سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور مالیاتی شمولیت کے لیے بیمہ سکھی یوجنا کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ با اختیار خواتین ملک کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں. خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے اپنے ہم منصب کے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پڑوسی ملک کے ساتھ مثبت اور باہمی طور پر مفید تعلقات کا خواہاں ہے. بھارت کے گائیڈڈ میزائل سے لیس نئے جنگی جہاز INS سشیل کو آج وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں روس میں بحریہ میں شامل کیا گیا. سنجے ملہوترا بھارتی ریزرو بینک کے اگلے گورنر ہوں گے. جنوبی کوریا نے صدر یون سوک یول کے بیرونی سفر پر پابندی عائد کر دی ہے. اور سنگاپور میں عالمی شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کے ڈی گوکیش چین کے ڈنگ لیرین سے 12ویں گیم میں ہار گئے.